ओम शांति। बाप दादा के वरदानों से हम सभी को लुटाने वाले, मूल्यों का सार निकाल करके हम सभी के समक्ष रखने वाले हैं। पहले जब मूल्यां आती थी तो हम खुद उसमें से प्रश्न और सार और सब निकालते थे, लेकिन आजकल हमारे राजू भाई काफी वर्षों से ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि हम सभी को उतना भी दिमाग और ये करने की जरूरत नहीं है। जैसे दुनिया के अंदर कंप्यूटर एक ऐसा आ गया है कि हर व्यक्ति को सब बातें सहज हो गई है, विज्ञान ने कई साधन ऐसे उपलब्ध किए, इसी प्रकार से राजू भाई ने भी ज्ञान को हम सहज अपने जीवन के अंदर धारण कर सके, अपना सके, ज्ञान को सहज हम समझ सकें, ऐसे सार मूल्यों के द्वारा, वरदान के द्वारा, पत्र पुष्प के द्वारा, अन्य बुलेटिन के द्वारा है, वो समय प्रति समय हमें देते रहते हैं। बोलते बोलते एक बात याद आती है कि एक बार एक गुरुजी के पास तीन शिष्य थे। तीनों की शिक्षा में वे उत्तीर्ण हो गए थे, बाकी एक परीक्षा बाकी थी। तो गुरुजी ने कहा, 3 दिन की आपको छुट्टी है, 3 दिन के बाद वह आपकी परीक्षा होगी और वह है धर्म की परीक्षा। तीनों जब जाते हैं तो रास्ते में कंटक और दलदल का रास्ता था, कांटे बहुत थे, दलदल भी थी। आप समझ सकते पगडंडी वाले रास्ते पर किस प्रकार से चला जा सकता है। तो एक ने क्या किया, कांटे बहुत थे तो कहा निकलना बड़ा मुश्किल है, बड़ी ऊंची छलांग लगाई, क्रॉस हो गया। दूसरा जब निकल रहा था तो निकल नहीं पा रहा था, उसने फिर भी कहा कि तुम इतनी देरी कर दोगे तो फंस जाओगे, हम भी मारे जाएंगे, तुम भी मर जाएगा। तो उसने भी संभल करके किनारे से रास्ता किया और निकल गया। तीसरा उस रास्ते से कांटों को हटा रहा था तो दोनों भाई चिल्लाए कि हम रात को यहाँ पर वन है, जंगल में हिंसक प्राणी है, वो हमें खा जाएंगे, हम मर जाएंगे, तुम क्या कर रहा है। तो कहा कि नहीं, इसीलिए मैं कांटे हटा। तो कहा कांटे नहीं हटेंगे, बहुत मुश्किल है। तो कहने मैं कांटे इसलिए हटा रहा हूँ कि जैसे हमें रास्ते को क्रॉस करना मुश्किल पड़ रहा है तो दूसरों को भी तो जरूर मुश्किल होगा, तो मैं दूसरों के लिए ये कांटे हटा रहा हूँ ताकि हर एक अपने जीवन के अंदर आसानी से ये रास्ता क्रॉस कर सके। इसी प्रकार से एक युवक है जिन्होंने युवा काल में अपने जीवन को समर्पित किया, बाल्यकाल से ज्ञान लिया लेकिन युवा काल में आकर के अपने जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित की, परोपकार की भावना, जो दूसरों का ध्यान रखता है, मन परोपकार, जो अपना नहीं रखता है, ऐसे हमारे परोपकार करने वाले राजू भाई। और आप ग्राम विकास के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं, बचपन से ज्ञान लिया और 40 वर्षों से भी अधिक आपने अपने जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित की। यज्ञ के कई कारोबारों को आप देखते हैं, निश्चय और विश्वास के साथ उन कार्यों को करते हुए आपने दादियों के दिल को भी जीत लिया। जो दादियों को भी अगर कोई कार्य होता है तो राजू भाई को तुरंत फोन करती हैं और राजू भाई पहुंच जाते हैं और उस कार्य को राजू भाई तुरंत करते हैं, माना दादियों का कहना और राजू भाई का कहना। ऐसे नहीं कि बाद में करता हूँ, मैंने जो अनुभव किया है वो यही अनुभव किया राजू भाई के साथ का, कि वो तुरंत, समय नहीं पर तुरंत करने वाले, ऐसे आज्ञाकारी वफादार हम सबके बीच राजू भाई उपस्थित हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इसीलिए ही राजू भाई का विषय है कि हम सभी भी ऐसे यज्ञ के स्नेही, यज्ञ के सहयोगी, क्योंकि यज्ञ है, इस यज्ञ का स्नेही बनना बहुत आवश्यक है और इस यज्ञ का सहयोगी बनना, बाबा का मददगार बनना, वह भी हम कैसे बने इस पर प्रकाश डालेंगे भ्राता राजू भाई से। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा के बेहद यज्ञ में आप सभी को योग तपस्या का गोल्डन चांस मिला है, एक बहुत बड़ी लॉटरी है। मधुबन तपस्या भूमि है और इस तपस्या भूमि में जहाँ पर स्वयं सहकार मात पिता और दीदी दादी तथा अन्य महान आत्माओं ने तपस्या की है, ऐसी तपस्वी भूमि जहाँ योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, खुद लग जाता, स्वतः लग जाता है और ड्रामा अनुसार आपको प्रकृति भी बड़ा मनोरम अनुभव करा रही है। सूक्ष्म वतन क्या है पूछने की जरूरत नहीं है, सैर करो आप, पता चलेगा कि हम सूक्ष्म वतन में सैर कर रहे हैं बादलों की दुनिया में। तो ये सबसे बड़ी लॉटरी आप सबको मधुबन की मिली है और मैं समझता हूँ आप दो दिन में यहाँ पर अच्छी तरह से खूब भरपूर हो गए होंगे। दो दिन हो गए ना, 31 तारीख को आए पहली और दो आज तीन है। मुझे भी आपसे मिलने का काफी समय से उमंग है, जब से प्रतिमा बहन ने मुझे कहा कि आप कहीं नहीं जाना, हमारे लोग भाई लोग बहनें आ रहे हैं सभी भट्टी के अंदर, आप उनसे जरूर मिलना। और आज के ही दिन मेरे आगे पेपर आया, आज ही मुझे बाहर जाना पड़ा, लेकिन मैंने कहा कैसे भी करके मुझे आज पहुंचना है। तो अभी अभी गुजरात बरसात भी चारों तरफ से खूब है और एक जगह पर नया भवन बना है बहुत बड़ा, उसमें गृह प्रवेश था और करीब 1200-1500 ब्राह्मणों का ब्रह्मा भोजन था। तो मैं फटाफट वहां गया, सुबह सुबह गया, सबसे मिला, एक घंटा क्लास भी कराया और मिल करके सबसे आपके बीच में आ गया। तो सवेरे से शाम तक की यात्रा पर ही हूं मैं, आप याद की यात्रा में हैं और मैं भी बाबा की याद के साथ साथ अपने सच्चे तीर्थों की यात्रा पर हूं। तो जाना और आना हुआ, बाबा का यज्ञ कितना विशाल वृद्धि को प्राप्त हो रहा है आप सभी अनुभव कर रहे होंगे, जिन्होंने ज्ञान में 10-15 साल बिताए हैं उनको पता है कि पहले का यज्ञ और अभी का यज्ञ उसमें कितना बड़ा अंतर है। जब मैं मधुबन में आया 42 साल पहले 71 में, उस समय मधुबन कितना छोटा सा था, हम लोग यहाँ पर केवल 30-40 भाई बहने रहते थे, छोटा हाल था और ये पुरानी बिल्डिंग थी। बाबा के समय हवाई महल और एरोप्लेन की बिल्डिंग ये दो बनी थी जिसमें बड़े भाई बहने रहते थे। और हम जब आए तो इतनी बरसात, इतनी ठंडी होती थी, जो लकड़ियां जो रोटी बनती थी एकदम गीली गीली होती थी। तो हम लोगों की ड्यूटी ऐसी लगी यज्ञ के अंदर, जो भंडारे की ऐसी सेवा और कई स्थूल सेवाएं थी, बहुत छोटा सा यज्ञ था। और अगर 100-150 भाई बहने इस यज्ञ में आते थे, मधुबन में पहुंच जाते थे, तो हम दादी जी को कहते दादी बहुत बड़ी सीजन है, इतने ठंडी बरसात में इतने क्यों बुलाए हैं। हम लोगों को अपने कमरे खाली करने पड़ते थे, कितने कमरे नहीं थे, मकान नहीं थे। आज वो यज्ञ जितना बनाते जाते हैं उतना छोटा पड़ता जाता है, बाबा के बच्चों की इतनी वृद्धि होती जा रही है। 20,000 का हाल है तो कहते ये भी छोटा पड़ रहा है, और बड़ा करो। इतनी सारी व्यवस्थाएं आप सब देख रहे हैं। बाबा ने ये रुद्र यज्ञ रचा क्यों? क्यों रचा है? कोई भी दुनिया के अंदर यज्ञ रचे जाते हैं, कोई आपदा आती है, कोई प्रकार की विपदा आती है, तो लोग यज्ञ कराते हैं, हवन यज्ञ, और उसमें स्थूल रूप में कुछ न कुछ तेल, जौ, घी उसकी आहुति देते हैं स्थूल में। और यज्ञ करने वाले, आहुति दिलाने वाले ब्राह्मण रचे होते हैं। यज्ञ सेठ लोग रचते हैं, खर्चा वो करते हैं, लेकिन जो उसमें पूजा करने वाले, आहुति देने वाले, दिलाने वाले, वो सब ब्राह्मण होते हैं, बहुत पक्के सच्चे ब्राह्मण होते हैं। लौकिक रीति से भी उनकी बड़ी मान्यता होती है। और स्वाहा स्वाहा खुद भी करते हैं और दूसरों से भी स्वाहा कराते हैं। और बाबा ने ये जो यज्ञ रचा है इसका नाम क्या दिया है? पूरा बोलो, आधे से बोल रही हो। राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। राजस्व माना स्वराज्य के लिए। बाबा ने बच्चों को स्वराज्य दिलाने के लिए अश्वमेध, अश्व को स्वाहा करना सिखाया है। कौन सी अश्व को स्वाहा करना है? कौन सा अश्व है? शरीर रूपी अश्व स्वाहा कर देंगे? अश्व वैसे कहते हैं मन, घोड़ा है, मन घोड़ा है ना, चंचल बहुत है। तो बाबा ने जो ये अश्वमेध यज्ञ रचा है, इस यज्ञ में जो भी मन के अंदर अशुद्धियां आई हैं, विकृतियां आई हैं, बुराइयां आई हैं, इनका उनको स्वाहा करना है, तब यज्ञ सफल होगा। तो बाबा ने 1936-37 में यज्ञ रचा, और आज वो यज्ञ बढ़ते बढ़ते बाबा कहता है इस यज्ञ के अंदर सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है, सारी पुरानी दुनिया की। तब तक यज्ञ संपन्न नहीं होगा जब तक सारी दुनिया की आहुति नहीं पड़ेगी। तो हम सभी ने अपनी आहुति दी है बाबा के यज्ञ में? आप सबने दी है? दी है। वैसे भी बाबा अपने बच्चों को कहते हैं जो भक्ति मार्ग में तुम संकल्प करते थे, ये प्रभु ये तन ये मन ये धन सब तेरा कहते थे ना, तो अब बाबा कह रहे हैं जो कहा है वो प्रैक्टिकल करके दिखाओ। वहां तो सिर्फ कहते थे, अभी कहना नहीं। लेकिन ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, ये धन भी तेरा है, सब बाबा के ऊपर अर्पित स्वाहा किया है सभी ने, कि कुछ कुछ किया है, कुछ नहीं किया है। बाबा ने हम सबको इस संगम युग पर तन भी बहुत अच्छे से अच्छा दिया है, मन भी बड़ा अच्छा है। अच्छा है कि नहीं? देखो ये तन कितना भाग्यशाली है जो इस तन के द्वारा हम भगवान के सन्मुख आते हैं, इन नयनों से बाबा को हम देखते हैं, इन कानों से बाबा के बोल सुनते हैं। कितने भाग्यशाली हैं कि ये तन भगवान से मिलाने का माध्यम बन गया, अनुभव कराने का माध्यम बन गया। मन इतना अच्छा है जो मन मनाभव हो जाता है, सहज लग जाता है। और बाबा ने जो धन दिया है वो भी कहता है बच्चे इसको तुम अपना मत समझना, नहीं तो ये धन बहुत बुराइयां और पाप कराता है। जितना बड़ा धनवान है उतना बड़ा कुकर्म करता है, विकर्म करता है। आज की दुनिया के हिसाब से धन के पीछे कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कितना पाप हो रहा है। लोग अपने जीवन के लिए, निर्वाह के लिए पैसा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन पेटियां भरने के लिए कहां कहां से कैसे कैसे झूठ, चोरी, ठगी से पैसा इकट्ठा करते हैं। और बाबा ने हम सबको सच्ची कमाई सिखाई है। धन भी जो है वो बाबा की अमानत है, और बाबा के ही कार्य में लगे, कहीं भी व्यर्थ न जाए। तो ये तीनों चीजें हम सब ने जिस दिन से हम बाबा के बने संकल्प किया, ये सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। और बाबा कहता, बच्चे ठीक है मेरा है, मैं क्या करूंगा लेकर, लेकिन मैं आपको देता हूं, इसको प्यार से अमानत समझ करके संभालना। अमानत है प्रभु की, ये इस अमानत को कहीं भी इधर उधर व्यर्थ में नहीं लगा सकते। तन भी कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। नहीं तो मान लो आज कोई भी एक भूल चूक से भी ऐसा कोई कर्म करता है, एक भाई अपनी गाड़ी में स्टिकर लगा दिया, सिर्फ शिव बाबा का स्टिकर लगा दिया, और स्टिकर लगा के आता था, सही सहयोगी था, बाबा का पक्का बच्चा नहीं था, उसको पता नहीं था। वो जहाँ डांस क्लब में होते हैं, डांस क्लब में हो जाता था, तो एक दिन वो गाड़ी बाहर खड़ी थी और वो अंदर गया होगा, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ब्रह्मा कुमारियां भी आजकल डांस में आती हैं, वो भी देखने आती हैं, क्योंकि वो जो स्टिकर लगा था ना, वो ब्रह्मा कुमारियों का प्रतीक है। तो बाबा कहता है कि कितनी बड़ी जवाबदारी तुम बच्चों के ऊपर आ गई है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं कर सकते बाबा के बनने के बाद, ये तर्म भी कहीं गलत रास्ते पर नहीं जा सकता है, ये उसी की अमानत है और उसी की सेवा में लगाना है, कहीं पर भी कुछ भी स्तन के द्वारा गलत नहीं कर सकते। ये प्रभु अमानत दी है उसने, तो ये उसी की सेवा के लिए ही है। दृष्टि भी उसकी है, तो दृष्टि से भी आत्मा को देखना है, देह को नहीं देखना है। हमारी हर कर्मेंद्रिय बाबा को समर्पित हो गई। सचमुच अगर कर्मेंद्रिय जीत बनना चाहते हो, स्वराज्य अधिकारी बनना चाहते हो, तो सबसे अच्छी विधि है इसको समर्पित कर दो, नहीं तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक मेहनत करोगे, युद्ध लगेगी, मेहनत है, युद्ध है। और बाबा ये सब तेरा है, मैं इसको यूज नहीं कर सकता हूं तुम्हारी श्रीमत के सिवाय। तो अगर बाबा की श्रीमत अनुसार हम इस दृष्टि को शुद्ध बनाकर, पवित्र बनाकर आत्मा को देखने का अभ्यास करते हैं, एक एक कर्म इंद्रिय बाबा के कार्य के लिए है, मुख केवल बाबा के ज्ञान रतन सुनाने के लिए है, कोई भी ऐसे शब्द मुख से न निकले, ये भी उसकी अमानत है। कान में भी ऐसी कोई व्यर्थ बातें न जाएं जो मन को विचलित कर दें। तो ये जो मूल कर्म इंद्रियां आत्मा के साथ साथ कर्म कर रही हैं, अगर इन कर्मेंद्रियों को समर्पित कर दिया, स्वाहा कर दिया बाबा के यज्ञ के अंदर, ये सब तेरी हैं, तो ये कर्मेंद्रियां बहुत शीतल, पावन, स्वच्छ बन जाएंगी, परेशान नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाबा ने जो ये यज्ञ रचा है, इस यज्ञ के अंदर जब से हम सब ने जन्म लिया, ब्राह्मण बने, तो अपने आप को चेक करना, देखना, सचमुच मैंने अपनी अंदर की सब प्रकार की विकृतियों का, पुराने संस्कारों का, स्वभावों का, ऐसी आदतों का इस यज्ञ के अंदर दान किया है, स्वाहा किया है कि अभी तक हैं, और अगर हैं तो वास्तव में जिसके अंदर भी हैं कोई ऐसी कमियां, कमजोरियां, वो यज्ञ का सच्चा ब्राह्मण नहीं कहला सकता, पक्का बच्चा नहीं कहला सकता है, कच्चे पक्के। बहुत से ऐसी आत्माएं हैं, लेकिन पक्के बच्चे वही हैं, सच्चे वही हैं, जिन्होंने सच्चे दिल से सब कुछ बाबा को अर्पित किया है। बाबा ये सब तेरा है, तूने मुझे अगर दिया है तो तेरे कार्य के लिए, संभालने के लिए है। तो बाबा ने यज्ञ रचा और कह रहा है बाबा कि बच्चे इसमें तो अखंड लंगर चलता रहेगा। अखंड लंगर समझते हैं, जहां कभी भी भंडारा खुटे नहीं, चलता रहे सदा ही। आप देखो सुबह से रात तक कितने लोग आके खाते हैं ब्रह्मा भोजन। इस सीजन के अंदर 10,000-12,000 अगर बरसातों में किसी घर में आ जाएं तो क्या हाल होगा। मधुबन में तो अखंड लंगर चल रहा है, द्रौपदी का भंडारा चल रहा है। द्रौपदी का भंडारा खुटने वाला नहीं है, अखुट है। तो आप देखें नीचे बाबा कहता था इस यज्ञ के अंदर बड़े बड़े डेगियां जिनमें भोजन बनता है ना, उनको डेग कहते हैं, कढ़ाइयां बड़ी बड़ी, एक से एक बड़ी आती जाती हैं, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 का भोजन बन रहा है, खा रहे हैं सब, चल रहा है, कौन कर रहा है सब। बड़े अचंभों की बात लगता नहीं है, कौन करा रहा है सब। और नए नए जब कोई आते हैं तो देख करके इतने अचंभित हो जाते, सब कर कौन रहा है, कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, कोई किसी को कहने वाला नहीं है, कोई बड़ा नहीं दिखाई देता, सब कुछ ऑटोमेटिक कैसे चल रहा है। मुंह जाते हैं आकर, यहाँ पर मधुबन में आते हैं बड़े बड़े VIPs, देखते हैं चारों तरफ से, पहले तो सोच नहीं सकते, इतना बड़ा यज्ञ है, इतना बड़ा आश्रम है इनका। और जब यहाँ आते हैं तो ऐसे देख देख तक करके चकित होते हैं, अचंभित होते हैं। एक हमारे पास अभी आया था रूरल विंग में, एक बहुत बड़ा अधिकारी पूसा से, जो रिसर्च सेंटर है ना एग्रीकल्चर का दिल्ली में, तो पहले मानता ही नहीं था कि योग्य खेती हो सकती है, बहुत बहस करता था ये कैसे हो सकता है। यहाँ आकर के सब देख करके कहता है सचमुच आप जो कह रहे हो बिल्कुल सत्य है, ये भगवान सब कुछ करा सकता है, ये यज्ञ उसी का है, ये आश्रम उसी से चल रहा है, कोई इंसान नहीं कर रहा है। एक एक चीज दिखाई उसको सिर्फ, और कुछ नहीं बताया उसको, देख करके ही कहता है सब कहां से आता है, ये कौन भेजता है, कहीं आप किसी से डोनेशन नहीं ले रहे हो, किसी से चंदा नहीं ले रहे हो, किसी के लिए भंडारी नहीं रखी है ऐसी, इसमें डालो, फिर भी सब कुछ चल रहा है। और आप सब कहते हो हम फ्री सेवा करते हैं, आज पैसा देने के बाद भी लोग सेवा नहीं करते, आप लोग सब फ्री सेवा करते हो, हजारों भाई बहने फ्री सेवा दे रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, पता ही नहीं चलता उनको ऐसा क्या हुआ है इनको, जो सब कुछ छोड़ करके इसमें सेवा में लग गए। तो बाबा ने इतना बड़ा यज्ञ रचा है और करण करावन हार स्वामी वो खुद ही करा रहा है, सचमुच उसकी लीला चल रही है। आप साक्षी होकर के अगर देखेंगे तो ये उसी का कार्य वतन से इमर्ज करके बच्चों से करा रहा है, जो कुछ कराना चाहे करा रहा है। लेकिन वो बहुत दूरादेशी बुद्धि समझ सकता है, ऊपर वाला नहीं समझ सकता, ऊपर ऊपर देखने वाला नहीं समझ सकता है। नहीं तो इतना सब देख करके लोगों को लगता है कितना चावल लगता होगा, कितना गेहूं लगता होगा, कितने मसाले लगते होंगे, कितनी चीजें आती होंगी, जहां 20,000-25,000 का लगातार लंगर चल रहा हो, कौन लाता है सब, कौन भेजता है सब, कहां से आता है, कभी विचार किया है कहां से आता है सब। बोलो हम सब बाबा के बच्चे, बाबा की भुजाएं हैं, बाबा ने हम सबको अपने यज्ञ को संभालने की जवाबदारी दी है। भगवान ने यज्ञ रचा है पुरानी दुनिया को चेंज करने के लिए, पुराने को नया बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए। और उसमें हम सबको कहता है बच्चे तेरे पास जो कुछ है, भूल से भी ये नहीं कहना मेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास जो कुछ है वो बाबा है, सब तेरा है, ठीक है। अगर भूल से भी कह दिया बाबा मेरे पास कुछ नहीं है, कभी कभी बाबा की मुरलियां आप सुनते हो, बाबा मुरली में कहता है कोई आता है गरीब बच्चा, बाबा मेरे पास कुछ नहीं, अच्छा बच्चा कोई बात नहीं, तुम अपने परिवार को खिलाओ पिलाओ आराम से रहो, नहीं है कोई हर्जा नहीं, लेकिन ध्यान रखना गरीब हो तो गरीब ही नहीं रह जाना। कई गरीब ऐसे अगर सोचे कि अगर बीज बोने का खेत में समय चल रहा है और मेरे पास इतना ही है जो मैं खा पी नहीं सकता, भूखा रहता हूँ, बीज कैसे बोने जाऊं? अगर बीज बो तो मिट्टी में डाल के आ जाऊं, ये कौन सी समझदारी है? और सोचता रहे बीज बोने के समय, खाए पिए आराम से रहे और बीज न बोने जाए, कुछ भी बीज न निकाले तो क्या हाल होगा उसका? वो सदा ही गरीब रह जाएगा। उसको जब फसल कटेगी लोगों की तो देख देख के आंसू आएंगे, मैंने बहुत गलत काम किया। उस समय भले मैं भूखा भी रहता लेकिन कुछ बीज निकाल करके अगर खेत में डाल देता तो एक का कई गुना होके मिल तो जाता। तो संगम युग बीज बोने का युग है। इस यज्ञ के अंदर कोई ने थोड़ा सा भी अपना कुछ भी सहयोग दिया, उसको बाबा एकदम माला माल कर देता है, भरपूर कर देता है। लेकिन अगर कहा कि बाबा मेरे पास कुछ नहीं है, तो बाबा कहता मैं कोई मांगता थोड़ी तुमसे, ये तो तेरा यज्ञ है, घर है, आपका ही है, जैसे चाहिए वैसे चलो। बाबा बहुत बड़े दिल से बच्चों का स्वागत करता है, वेलकम करता है, पालना करता है, खिलाता पिलाता ठहराता है। लेकिन कोई कोई एक दूसरे को पूछते हैं, तुमने कितना किया? बाबा कहता तुमने पूछ पूछ करके अपना भाग्य गंवा दिया। ये भी क्यों पूछते हो? जिसको जो मर्जी हो करे, उसका बाबा का घर यज्ञ है और आपका अपना घर है, जो चाहिए वो करो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जितना बाबा हमें दे रहा है उससे अधिक मैं नहीं अपने ऊपर कर्जा चढ़ा दूं। जितना दे रहा है, जितनी पालना मिल रही है, कम से कम कुछ उससे अधिक दे करके मेरा भाग्य बना दो, नहीं तो उसमें फिर बेपरवाही लापरवाही कई बार कई बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए ध्यान क्या रखना है कि अगर मान लो कुछ भी कमी है, नहीं भी है, तो भी बड़े दिल से जो शक्ति है, बाबा कहता तुम्हारे पास जो शक्ति है, तन की शक्ति है तो तन से सेवा कर लो, बाबा के कार्य में हाजी करके तन लगा लो। हम लोगों के पास और कोई शक्ति नहीं थी। हम जब मधुबन में आए, बहुत साधारण परिवार से, गांव से बाबा के घर में समर्पित हुए आकर के, बहुत गरीबी भी थी उस समय, बेगरी पार्ट जैसे यज्ञ में था वैसे सारे भारत के अंदर अकाल था, संसार के अंदर लाल लाल गेहूं अमेरिका का आता था और वही लोग खाते थे उस समय, बहुत गरीबी, भारत के अंदर ही गरीबी थी। इसलिए जब लाल बहादुर शास्त्री आए तो उन्होंने कहा एक दिन का व्रत रखो, खाना बंद करो, एक दिन भोजन नहीं बने, किसी घर में नहीं बनेगा, पूरे भारत के अंदर एक टाइम खाना नहीं बनता था, वो समय था। और वो भारत में जो गरीबी थी उस समय की, उस समय के परिवार कैसे होंगे, लेकिन फिर भी बाबा के घर में जब बच्चे आते थे चावल मुट्ठी जरूर लाते थे, चावल मुट्ठी, सुदामा की गाय हुई है ना, अगर वो सुदामा ने चावल मुट्ठी नहीं लाई होती तो उनको कुछ नहीं मिलता। इसलिए उनकी जो मिसेज थी, युगल थी सुदामा की, जिसको श्री कृष्ण भाभी कहते थे, वो भाभी बड़ी चतुर थी। जब सुदामा भगवान से मिलने के लिए जा रहे थे तो बोला तुम खाली हाथ क्यों जा रहे हो? तो बोला मैं क्या ले जाऊं, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। बोला अरे ऐसे थोड़ी जाया जाता है किसी मित्र से मिलने के लिए, भले भगवान है तो क्या हुआ, कुछ तो ले जाओ। कहा क्या ले जाऊं? तो जो चावल थे घर में, सूखे चावल बांध करके दे दिए कि तुम ले जाओ भगवान को देना जाके। अब वो बेचारा कैसे दे, कितना बड़ा महाराजा, इतना बड़ा ठाट बाट, इतने बड़े घरों में रहने वाला, उसको मैं चावल कैसे दूं? तो ऐसे छिपा लिया। ऐसे कहते जब छिपा के गया तो पहले ही जाते भगवान उससे पूछते हैं भाभी ने क्या भेजा, तो बेचारा क्या बताया, कुछ नहीं बोले। तो भगवान ने देखा इसके बगल में कुछ है, छीन लिया और खाने लगे। एक मुट्ठी खाई, एक महल बन गया, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा। तब कहीं कहते रुक्मणी को क्या लगा, रे कि ये क्या कर रहे हैं, सारा ही दे देंगे क्या? तो ढोक दिया बीच में। ये कहानी है, लेकिन कब की कहानी है? ये संगम की, अभी की कहानी है। इस घर में बाबा के पास बहुत बूढ़ी बूढ़ी माताएं ऐसा चरित्र दिखाती रही हैं, शुरू से लेकर के अभी तक। जब ज्ञान सरोवर बन रहा था साकार बाबा के समय, तो मैं भी इतना समय मधुबन में नहीं रहा, लौकिक में ही पढ़ाई थी, बचपन था। लेकिन बाबा के समय भी ऐसे खेल चलते थे, हमारे पिताजी भी ऐसा करते थे, वो भी कुछ न कुछ ऐसे बांध करके ले आते थे। लेकिन जब मैं यहाँ मधुबन में रहा और देखता था कि ये भी घर में उस समय बहुत बहुत बेगरी पार्ट से हम लोग आगे आए यज्ञ में, तो उस समय भी अगर कोई थोड़ा सा भी देता ले आता था तो दादी उसकी कितनी दिल से महिमा करती थी। स्टेज पर उसको बुला लेती, अगर आया है, नहीं आया है तो उसकी चीज ले आकर के यहाँ रखती और सबको बताती आज फलाने ने भेजा है। एक बार जब ज्ञान सरोवर बन रहा था तो एक क्लास के अंदर जो जमादार का काम करते हैं ना, मेहतर जिसको बोलते हैं, एक माता गांव की क्लास में आती थी, वो बहुत साफ स्वच्छ होकर के मुरली सुनने बाबा की आती थी और उसके पास पता था उसको कि बाबा के घर में इतनी बड़ी ज्ञान सरोवर बन रहा है, मैं भी कुछ सहयोग भेजूं, क्या सहयोग भेजूं, गरीब तो थी, लेकिन उसने जो मेहनत की उसने इकट्ठा करती गई, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करती गई और फिर उसने उसी को बेच करके एक सोने की अंगूठी बनाई और अंगूठी बना करके एक टीचर के साथ उसमें बंद करके कागज में लपेट करके भेजी और उसमें लिखा कि ज्ञान सरोवर में मेरी ईंट लगा देना। और दादी को पता चला उसने भेजी है, वो माता जो इतनी गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है, इतनी मेहनत करती है, उसको ले करके दादी अंगूठी पहन करके इतना डांस किया, इतनी उसकी महिमा की, उस माता ने आज ज्ञान सरोवर के लिए ईंट भेजी है। इतना दिल से उसको दुआएं दी, जो बहुत बहुत प्यार अंदर से, आप समझ सकते हो कि ऐसी गरीब गरीब माताएं, गरीब गरीब बाबा के बच्चे जो सच्चे हैं, जो दिल वाले हैं, पैसे वालों को ये होता है मैं क्यों दूं, ये सब इतने सब करने वाले हैं, लेकिन जो गरीब गरीब हैं उन्होंने अपना भाग्य बनाया है। इसलिए भगवान कहता है गरीबों को मैं साहूकार बना देता हूं और साहूकार बेचारे ऐसे रह जाते हैं क्योंकि उनका सफल नहीं हो पाता। तो ये यज्ञ भगवान ने रचा है कि सब बच्चों का तन मान धन समय श्वास संकल्प जो कोई विशेषता है वो सब सफल हो जाए, कुछ भी न रहे, ऐसा कोई नहीं कहे कि मेरा तो बैंक में रह गया, मेरा तो राजा ले गया, मेरा तो चोर लूट गया, मेरा तो प्रकृति के साथ बह गया, बाढ़ में बह गया, तो बाबा क्या कहेगा, अरे बच्चे क्यों बेसमझी का काम करते हो, सफल करने का समय है और तुम कह रहे हो कर लेंगे, हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, मकान बना के दे देते हैं सेंटर को, सेवाएं करो बहन जी, सेवाएं करो, डरो नहीं, हम बैठे हैं ना, मकान तो दे दिया यज्ञ के लिए, चलो सेवा के लिए दे दिया, लेकिन हम बैठे हैं इसलिए कोई भी कागज पर लिखत में नहीं दिया, अचानक चले जाते हैं, हार्ट फेल हो गया, अचानक शरीर छूट गया, कल उनके संबंधी पता नहीं, जो कहीं नहीं थे सोए हुए थे, पता भी नहीं था कोई संबंधी, वो भी जाग जाते, अरे मेरा था, मेरा अधिकार है, मेरी प्रॉपर्टी है, बहना निकल जाओ यहां से, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है तुम्हारा है, वो तो तुमने कोई जादू किया होगा, तुमने कुछ कहा होगा इसलिए तुमने रहने लगी। बेचारे वो मकान जिसने इतनी मेहनत से बनाया, यज्ञ को दिया, लेकिन उसका सफल नहीं हुआ, चला गया, बेकार हो गया। अगर वो एक ही कागज पर थोड़ा सा लिखत में दे देता, साइन करके जाता कि ये बाबा का ही है, इस पर बाबा का ही अधिकार है, तो आज उसका भाग्य तो बन जाता। कई ऐसे अलबेलेपन में चलते रहते हैं, चलते रहते हो, अचानक आज कलयुग में किसी के श्वास का तो भरोसा नहीं, बहनों को कहेंगे बहन जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहो ना, बाबा का ही है, कोई इसको यूज नहीं करेगा, और अचानक ऐसा कुछ हो जाता है। कई जगह के समाचार हैं मेरे पास, बेचारे का भाग्य नहीं बना। तो कहने का भाव मेरा ये है, जो कुछ करना है सच्चे दिल से करना है और स्वाहा कर दो, जो दीज स्वाहा चीज हो जाती है वो फिर से अगर बाहर रह जाती है ना, उसको हाथ नहीं लगाते। कोई चीज आप यज्ञ के अंदर ऐसे डालो और अगर कोई बाहर कणा गिर गया तो ऐसे नहीं उठा करके खा लेंगे उसको, वो भी कहेंगे स्वाहा, उसको भी झाड़ फूक करके उसमें डाल देंगे। तो बाबा कहता है जो कुछ करो बड़े सच्चे दिल से करो, जिससे तुम्हारा भाग्य बन जाए और बाबा के यज्ञ में वो सफल होना चाहिए, और जिन्होंने समय पर सफल किया है उनको बहुत दुआएं मिली। बाबा की दुआएं और परिवार की दुआएं, सबकी दुआएं, क्योंकि उसका सफल हो गया तो सफल एक का एक सफल हुआ तो उसका हजार गुना पदम गुना रिटर्न मिलता है। हमारे पास एक परिवार आता था कुछ समय पहले, अभी शरीर छोड़ा है, उसने दोनों डॉक्टर थे और उसकी युगल को बड़ा बाबा में बहुत बहुत भावना थी, तो अपने युगल को कहती है, डिस्पेंसरी चलती थी बॉम्बे के अंदर उसकी, इसमें जो सबसे बड़ा नोट आएगा वो यज्ञ में जाएगा। पहले तो भाई सोचने लगा ऐसा कैसे करेंगे, हमारे पास कमी पड़ जाए, तो बोला नहीं बाबा के लिए पहला नोट बड़ा नोट, माना उस समय 1000 का नहीं था 500 का ही था, तो उसने 500 का नोट अलग कर दी गई। सब जितने नोट मास में इकट्ठे होते थे सब अलग और इकट्ठा करके मास के एंड में इकट्ठा डंडी बना के यज्ञ में भेज देते बाबा के। हम लोगों को पता चलता था किसने भेजा, जब 500-500 के नोट इकट्ठे आते हम कहते थे ये उसी ने भेजा होगा। कहती थी बाबा के यज्ञ में जितना मैं करती हूँ ना उसका कई गुना करके बाबा रिटर्न कर देते, और बहुत अच्छी डिस्पेंसरी चलती, सब साधन आ गए मेरे पास, कोई कमी बाबा नहीं रखता, लेकिन एक भावना मैंने जो संकल्प किया आज बाबा उसको पूरा कर रहा है। जो बाबा के बच्चे ऐसे सच्चे मन से दिल से करते हैं बाबा एकदम उनका सब मनोकामनाएं पूरी कर देता। यज्ञ मन इच्छित फल देता है, अगर सच्चे दिल से सेवा यज्ञ के अंदर किसी ने की है, हम लोगों का ये अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव है सच। जब से मैं आया हूं माता पिता की दुआएं बड़ों की दुआएं एक लेने का एक इतना लक्ष्य रखा, क्योंकि और कुछ सीख के नहीं आया, छोटा आ गया 15 साल का आया, कोई भी बाहर की दुनिया का ज्ञान नहीं, कोई भी प्रकार का अनुभव नहीं, यहां आया सबसे पहले आया था इतने परिवार से, हमारे पिताजी 3 भाई लौकिक थे और 3 में मैं इकलौता बेटा था। आप समझ सकते हो माँ कैसे प्यार से रखती होगी, कभी हाथ से कभी कुछ भी किया नहीं, और यहां आते ही मेरे से सबसे पहले एक लकड़ी का ट्रक आया, बोला इसको खाली करो। 3-4 भाई हम चढ़े लकड़ी के ट्रक के ऊपर, कभी उठाई रही थी इतनी मोटी मोटी लकड़ी, और सबसे पहले वो लकड़ी के ट्रक खाली किया। फिर उसके बाद धोबी घाट होता था, बोला धोबी घाट को, क्योंकि स्थूल सेवाएं सब थी पाटे पर धोबी घाट, और सब स्थूल सेवाएं बाबा के घर में की, लेकिन कभी ये संकल्प नहीं आया कि मैं इसके लिए थोड़ी बाबा के घर में आया हूं, कभी संकल्प तक भी नहीं इसके लिए थोड़ी आया हूं, किसके लिए आया हूं, अगर आया हूं बाबा के बना हूं तो जो बाबा सेवा कराए जैसी सेवा कराए। और इतने दिल से यज्ञ की जो सेवाएं की, आज मैं आपको अनुभव से कहता हूं कि यज्ञ पिता यज्ञ माता दीदी दादी इतने खुश इतने संतुष्ट हो गए, जो आज कोई भी संकल्प भी कहने की जरूरत नहीं, सब मनोकामनाएं पूरी, कोई चीज का संकल्प करो हाजिर हो जाता है। मन इच्छित फल यज्ञ देता है, यज्ञ पिता अगर किसी पर प्रसन्न हो जाए वो राजी हो जाए तो उसको क्या चीज की कमी रह सकती है। हम लोगों के जीवन का अनुभव है इस समय कि आज कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं, अप्राप्त शक्ति नहीं, अप्राप्त चीज नहीं, कोई चीज की कमी नहीं, सब इच्छाएं। सतयुग का जन्म तो होगा लेकिन उसका पहला जन्म का अनुभव अभी बाबा करा रहा है, बिल्कुल जैसे राजाओं की क्या पालना होगी जैसे हम लोगों की पालना है मधुबन में, हर चीज का ख्याल है हर चीज का ध्यान है, बाबा करा रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, सुला रहा है, आराम से रख रहा है, सब प्रकार के साधन और सुविधाएं, लेकिन हम अपने प्रति अगर उनको यूज कर रहे हैं तो हम उसके चक्कर में फंस सकते हैं, ये बाबा का है मेरा नहीं है। बाबा की देन बाबा को अर्पित, कभी उसमें ममता न हो जाए मेरा है, वो सेवा के लिए बाबा ने दिया है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप सभी बाबा के बच्चे, अभी बच्चे बन गए ना, मेहमान तो नहीं है ना, आप सभी मेहमान है कि बच्चे हैं, पक्के हैं ना, और ब्राह्मण बच्चे हैं ना, यज्ञ में स्वाहा कराने वाले हैं ना, अपना भी कर दिया और दूसरों का भी स्वाहा, सबको बोलो सबको स्वाहा करना पड़ेगा। जो कुछ है, कमियां हैं कमजोरियां हैं स्वभाव हैं आदतें हैं संस्कार हैं, तन है मन है धन है समय है श्वास है विशेषताएं हैं बुद्धि है, जो कुछ है बाबा कहता बच्चे दिल से कहो बाबा ये सब तेरा स्वाहा, सफल हो जाएगा। बाबा उसका कई गुना करके आपको रिटर्न कर देगा, बच्चे तेरे लिए ही तो है, कंचन शरीर दे देगा जहां कभी रोग होगा ही नहीं। अगर बाबा के यज्ञ में कोई ने दिल से सेवा की है ना, तो उसका शरीर भी एकदम स्वस्थ हो जाता है, इस समय भी स्वस्थ हो जाता है, समय पर काम करता है। आज दादियां देखो इतनी एज में भी कितनी सेवाएं कर रही है। परसों दादी जानकी इतनी बीमार, आज लंदन चली गई, आज लंदन पहुंच रही है, जा रही है। तो आप सोच सकते हो 97 इयर्स में बाबा इतने तन से सेवा करा रहा है। जरूर क्या क्या सेवा दादी के अनुभव में सुनेंगे। नर्स थी, नर्स का सेवा इतनी जबरदस्त सेवा थी। उस समय कोई डॉक्टर बाहर के नहीं थे, कोई बीमार पड़ गया, बूढ़ी बूढ़ी माताएं सरेंडर हुई थी, कभी कोई बीमार है, कभी कोई कुछ है, हाथ में ऐसे उल्टी लेती थी, ऐसे इतनी सेवाएं करती थी दिल से। कभी नहीं कहा होगा बाबा ये मैं थोड़ी सेवा करने के लिए यज्ञ में आई हूं। आज उसका तन समय पर साथ तो दे रहा है, मदद कर रहा है। तो अगर कोई भी बाबा का बच्चा बाबा के घर में यज्ञ में आए, कोई भी प्रकार की सेवा, कई बार कह देते हैं बहने तो देखो एक साल दो साल की टीचर बनती हैं और स्टेज पर क्लास कराना शुरू कर दी, हम लोग तो 20-20 साल से पढ़े हैं, दरी घिस रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं। कई बार ऐसे भाइयों के कुमारों को संकल्प आ जाते हैं कि हमको तो स्टेज कभी मिलती नहीं, लेकिन बाबा कहता है स्टेज मांगने से थोड़ी मिलती है, स्टेज बना लो आपको स्टेज मिल जाएगी। स्थिति अच्छी बना लो, जो सेवा मिले करते चलो करते चलो। हम लोगों ने मांग करके कोई सेवा ली नहीं आज तक, बाबा अपने आप सब दे रहा है, करण करावन हार करा रहा, मांगने की क्या जरूरत। हम अगर योग्य बनेंगे तो जिस प्रकार की योग्यताएं आती जाएंगी उस प्रकार की सेवा का चांस मिल जाएगा। इसलिए लक्ष्य रख करके अपने आप को ज्ञान से, योग से, धारणाओं से, सेवा से, चारों सब्जेक्ट से जो बाबा ने कराई है, उन चारों सब्जेक्ट में नंबर आगे आ जाए। कोई भी सेवा छोटी नहीं है, कर्मणा सेवा की भी मार्क्स उतनी ही है जितनी वाचा सेवा की है। और अगर हम वाचा सेवा भी नहीं कर सकते हैं, कर्मणा सेवा भी नहीं कर सकते हैं, तन भी साथ नहीं देता, तो बाबा कहता है बैठ करके योग तो करो, शुभ भावना तो रखो, मनसा तो इतनी अच्छी बनाओ जो अच्छा वायुमंडल बने। कईयों को आदत होती है, बूढ़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, मैं कोई सेवा नहीं कर सकता, तो और चिड़चिड़े हो जाएंगे, गुस्सा आएगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो कुछ नहीं काम का हूं। और फिर चलते चलते कई लोग दिल शिकस्त, निराश, उदास, हताश, खुशी गायब हो जाते। इतना बड़ा भाग्य है, भगवान कहता है किसी भी उम्र में कोई आया है भगवान का बच्चा बन गया, भाग्य बना ले बना सकता है, लेकिन अच्छी स्थिति तो रखे, स्थिति तो न बिगाड़े। तो अगर अच्छे से अच्छा भाग्य बनाना तो अच्छी स्थिति में रहना सीख जाओ। स्थिति अच्छी है, सेवा अपने आप बाबा कराएगा। स्थिति खराब हो गई, सेवा में जाए हम, मान लो आज कोई प्रदर्शनी करें, कोई सेंटर खोलें, और फिर तेरा मेरा में आकर के इसको ऐसा चांस मिला, इसको ऐसा मिला, ये ऐसा करता वो ऐसा करता, तेरे मेरे के चक्कर में आ जाए, तो क्या होगा, स्थिति बनेगी या बिगड़ जाएगी। कई बार क्या होता है, चलते हैं सेवा करने और अपनी स्थिति को खराब करके आ जाते, मूड खराब कर लेते। बाबा कहता उस सेवा में क्या मिला, उसकी मार्क्स खत्म। इसलिए सदैव ध्यान रखना हम सब सेवा पर हैं, और सेवा शब्द ही इतना अच्छा है, सेवा माना ही सुख देना सुख लेना। सेवा उसको कहते हैं सुख दो सुख लो। कोई आत्मा डिस्टर्ब हो जाए मेरी सेवा से, उस सेवा से क्या फायदा है। तो बाबा का यज्ञ निर्विघ्न रहे, वैसे यज्ञ में यज्ञ तो सदा निर्विघ्न है ही, भगवान का है ना, उसमें विघ्न क्या आएंगे। लेकिन फिर भी बच्चे कई बार श्रीमत की अवज्ञाएं करके उसमें विघ्न रूप बनते, बाहर वाले विघ्न बाद में डालते हैं। वैसे कहते हैं जब भगवान या ऋषि मुनि संत यज्ञ रचते थे तो असुर उसमें बहुत विघ्न डालते थे, कीचड़ा डाल देते थे, गोबर डाल देते थे, ऊपर से बुझा देते थे, कुछ न कुछ उपद्रव करते थे। नहीं दिखाते हैं जब वशिष्ठ ने यज्ञ रचा, विश्वामित्र ने यज्ञ रचा, तो उनके यज्ञ के अंदर बहुत असुरों ने आकर के विघ्न डाले, तो उन्होंने जाकर के राम लक्ष्मण का सहायता ली कि आप मदद करो मेरे, और उन्होंने आकर के रक्षा की यज्ञ की, और तीर कमान लेकर के खड़े हो गए, कोई भी आए तो उसको असुरों को मार दिया। वैसी कोई स्थूल में बातें हुई होंगी क्या? ऐसी स्थूल वाली जो मनगढ़ंत कहानियां बनाई हो तो कहानियां हैं, लेकिन रियल यज्ञ जो बाबा ने रचा है ना, इसमें बहुत से विघ्न ऐसे आते हैं। और सबसे बड़ा विघ्न आता है अगर कोई आत्माएं चलते चलते, मान लो आज 5 साल 10 साल 15 साल आप बाबा के बच्चे बन करके चलते हैं, सबको ज्ञान सुनाते हैं, सबको कहते भगवान सृष्टि पर आया है, और कल कोई विकारों के अधीन होकर के वशीभूत होकर के कोई गलत काम करने लगते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, मूड खराब कर लेते हैं, लोग पूछते हैं कल तो आप कहते थे मैं भगवान पढ़ाता है और आज क्या हो गया आपको, अब क्यों नहीं क्लास में आप जाते हो? अरे वो तो कहे कहे पर, सुनी सुनाई पर कह दिया, हमको तो पता नहीं था। ये विघ्न नहीं है, सबसे बड़ा विघ्न ये है कि अगर कोई बाबा का बच्चा बन करके और फिर विपरीत बुद्धि हो करके ट्रेटर बन करके बाबा के यज्ञ की बदनामी कराने लगता है तो सबसे बड़ा विघ्न है। इसलिए जो है जैसा हूं बाबा तेरा हूं, तेरी आज्ञा को श्रीमत की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है। बाबा ने जितनी बाउंड्री बनाई केवल निमित्त टीचर्स के लिए नहीं है, यही एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहो, यज्ञ कहो, यही आश्रम कहो, जो इसको नाम दो, लेकिन यही एक स्थान ऐसा बाबा का है जिसमें हरेक के लिए एक जैसे नियम है, चाहे वो प्रवृत्ति के अंदर है, चाहे वो सेंटर पर समर्पित है, चाहे वो मधुबन निवासी है, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, पढ़ाई एक जैसी। कितना वंडरफुल है कि आज 135 देशों में हर लैंग्वेज के अंदर एक ही मुरली पढ़ी जाती है और एक ही समय पर पढ़ी जाती है। कोई ऐसा आश्रम दुनिया के अंदर हो सकता है? अपनी अपनी कथा करेंगे, अपनी अपनी पाचन प्रवचन करेंगे, एक जैसी पढ़ाई किसी भी स्थान पर, इतने लोग, लाखों लोग, अभी तो लाखों हो गए ना, 10 लाख से भी ऊपर बाबा के बच्चे, एक जैसा अध्ययन, एक जैसा प्रसारत, एक जैसे डायरेक्शन सबको मिल रहे हैं, किसकी कमाल है? बाबा की ना, करण करावनहार करा रहा है। तो सबके लिए एक जैसे नियम बनाए हैं, तो हम चाहे प्रवृत्ति में है चाहे हम सेंटर पर हैं, हर एक के लिए एक ही नियम है, पवित्र बनो, योगी बनो, अपने जीवन के चरित्र से, अपने चेहरे से, अपने चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करो। कोई भी ऐसी एक्टिविटी मेरे से ना हो जो लोग की नजर जाए कि ऐसा सिखाया जाता है क्या। अभी और पहले के जमाने में बहुत बड़ा अंतर आया है। पहले अगर कोई गलत काम होता था, कोई कर लेता था, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आने वाला अगर कोई गलत करता था तो लोग कहते थे ब्रह्मा कुमारी आश्रम ही ऐसा है, वहां शायद ऐसी शिक्षाएं दी जाती। पहले के दृष्टिकोण में आश्रम पर ध्यान जाता था, और आज के दृष्टिकोण में ये है परिवर्तन, कहते हैं आश्रम में गलत नहीं होता, वो तो बहुत अच्छी शिक्षाएं दी जाती, ये व्यक्ति गलत है। आज व्यक्तिगत कोई अगर गलत करता है तो लोग ये कहते हैं ये गलत है, आश्रम बहुत अच्छा है, हम तो देख के आए, हमने जाना है, हमने समझा है, इनकी शिक्षाएं बड़ी ऊंची हैं, लेकिन ये कुछ गलत है, ये गलत कर रहा है। तो जो मेरे ऐसे कड़े संस्कार हैं जिससे बाबा के कार्य में विघ्न पड़े, हमारी स्थापना में विघ्न पड़े, परिवर्तन में विघ्न पड़े, उस कार्य, उस संकल्प को, उस संस्कार को चेक करके उसको परिवर्तन कर, इसलिए भट्टी में आया ना। कोई भी ऐसी आदत हो, कोई भी ऐसा संस्कार हो जो मुझ आत्मा को बार बार डिस्टर्ब कर रहा हो, इस यज्ञ में आए हो बेहद यज्ञ में, कहो बाबा को स्वाहा, लिख करके बाबा के आगे भंडारी में डाल दो, बाबा स्वाहा, अब से इसको इमर्ज होने नहीं देंगे। जब दृढ़ता के साथ स्वाहा कर दोगे, वापस जल गया तो वापस कैसे आएगा? इसलिए ध्यान रखना कि जो कुछ ऐसी आदत है, जो कोई संस्कार स्वभाव है जो मेरे मार्ग के अंदर विघ्न रूप है, अभी तो मेरे आगे ही विघ्न है, बाबा के यज्ञ के लिए भी बड़ा विघ्न है वही। इसलिए सबसे अच्छी बात यही है कि हमारे पास जो कुछ ऐसा है बाबा को लिख करके, समर्पित करके, स्वाहा करके, यज्ञ हमारा निर्विघ्न रहे, बाबा का कार्य निर्विघ्न रूप से आगे बढ़े, सेवाएं आगे बढ़े, एक लक्ष्य रखेंगे ना, बहुत सहज रीति से सब आप देखेंगे कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन ऐसे सहज नहीं होता है, मुरली सुनते रहो, क्लास करते रहो, इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन के लिए चार चीजों की जरूरत है। पहले तो समझ चाहिए गलत है। कई बार क्या होता है, मैं गलत हूं, मैं समझता ही नहीं हूं, कर रहा हूं, बोल रहा हूं, चल रहा हूं, सबके बीच में रहता हूं, मुझे पता ही नहीं मेरी कमी क्या है, समझ ही नहीं है। जैसे सब चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूं। पहले समझ चाहिए, फिर समझ के बाद अंदर की महसूसता चाहिए। महसूसता, समझ आई गलत है, फिर अंदर जाकर के महसूस करना, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि विवेक तो सबके पास है, विवेक बताता है ये गलत हो रहा है, हम उसको दबाए नहीं। समझ के बाद जब महसूस किया, तो महसूसता के बाद फिर दृढ़ता की जरूरत है, बहुत दृढ़ता। कुछ भी हो जाए, मैं खाना छोड़ू, मैं नींद छोड़ू, मैं कुछ भी करूं, इसके लिए मुझे तो इस संस्कार को जलाना है, भस्म करना है। और जब दृढ़ता का संकल्प आता है, तो उसके बाद सहन करना पड़ता है, कुछ न कुछ सहन करना पड़ता है। परिवार से सहन करना पड़ता है, शारीरिक रूप में भी सहन करना पड़ता है, लोगों से भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है। बड़ा आया योगी, कल तो देखो कैसा था, आज कहता मैं ऐसा हूं। लोगों से भी सुनना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। इसलिए चारों चीजें जब जीवन के अंदर आ जाएंगी, एक समझ, एक महसूसता, एक अंदर की दृढ़ता और एक अंदर की सहनशीलता, कुछ भी कोई कहे मुझे तो ये करना ही है, परिवर्तन हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे कोई भी संस्कार, कोई भी आदत पुरानी है, बाबा के घर में आए हो, एकांत में बैठो, समझ तो बाबा रोज दे रहा है, मुरली क्या है, समझ है ना। हम सब के आगे जैसे कोई आईने के आगे खड़ा हो जाए ना, अच्छा आईना होगा तो बहुत अच्छी तरह से छोटे दाग का पता चलेगा। बाबा इस मधुबन को कई बार कहता है ये शीश महल है। शीश महल में जाते हैं ना तो वैरायटी पोज उसके अंदर दिखाई देते हैं अपने अपने। तो मधुबन ऐसा एक शीश महल है, जिसके पास आते ही बाबा के कमरे में जाओ, शीश महल है, पता चलता है बाबा क्या है, मैं क्या हूं, ये आत्माएं क्या है मधुबन में, क्या है और मैं क्या हूं। तो एक महसूसता, एक समझ मिल जाए, मुरली से समझ मिल जाती है, फिर अंदर एकांत में जाके महसूस करना, ये नहीं होना चाहिए मेरे अंदर। और फिर उसके लिए एकदम दृढ़ता करो, मैं इसके लिए तपस्या करूं, इसके लिए मैं कुछ त्याग करूं, इसके लिए मैं कुछ छोड़ूं, फिर कुछ सहन करना पड़ेगा, कर लूंगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है, चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए इस यज्ञ के अंदर आए हैं आप सभी। यज्ञ तो बाबा का चल रहा है, चलता रहेगा, जब तक इस यज्ञ के अंदर सब ने स्वाहा नहीं किया तब तक यज्ञ पूरा होने वाला नहीं है, अंत तक चलेगा। बाबा कहता है भंडारा चलता रहेगा बाबा का, और ये ज्ञान का यज्ञ भी बढ़ता जाएगा, बढ़ रहा है, बढ़ता जाएगा। और सारी दुनिया की आत्माएं अपना तन मन धन सब इसमें जब स्वाहा करेंगे तो विश्व नया बन जाएगा। तो हम सबको तो भाग्य मिला है स्वाहा करने का। करते हो स्वाहा? जो है बाबा तेरा, यही स्वाहा है, और क्या है, कुछ नहीं मेरा, जो मेरा मेरा है, दिल से कह दो ये बाबा सब तेरा है। और बाबा कहेगा बच्चे अच्छा तेरा कर दिया, अब इसको प्यार से संभालना सीखो। कभी भी एक पाई भी बाबा की अमानत है, कहीं भी व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। नहीं तो आजकल क्या होता है, दूसरों को देख करके हमारे शौक बढ़ जाते हैं। कईयों के ऐसे परिवार होते हैं, बच्ची की शादी करनी, बाबा कहता कर दो बच्चे, शादी ब्याह परिवार है, करना पड़ता है, बाबा मना नहीं करता, भले करो, लेकिन लोगों जैसा खर्चा करके, दिखावा करके, फैशन करके, बहुत सारा खर्चा करके, इसके बाबा कहता बच्चे ये बाबा की अमानत है, बिल्कुल खर्च नहीं करो, बैठ दो, जितना जरूरी समझते उससे उतने से काम निकाल लो। तो इस प्रकार अगर कोई भी लौकिक कार्य आपके आगे आते हैं, जरूरी हैं, बाबा मना नहीं करता कि घर के लिए ही नहीं हमारे पास है। परमार्थ और व्यवहार दोनों का बैलेंस है। व्यवहार अपनी जगह पर है, लौकिक है, लौकिकता जहां है बाबा मना नहीं करता, लौकिक के लिए है, लेकिन परमार्थ पर ध्यान है। परमार्थ के लिए भी उतना ही है जितना लौकिक पर ध्यान है। तो बाबा के कार्य में सफल होता जाए, तन भी मन भी धन भी कोई भी विशेषताएं हैं, अगर बाबा के कार्य में लग जाएंगे तो एक का कई गुना होकर रिटर्न मिल जाएगा। तो बाबा तो रिटर्न देने के लिए बंधा हुआ है ही, सतयुग में देगा हम उसकी कल्पना न करते रहें, लेकिन वर्तमान समय ही उसका अनुभव करो। अगर वाणी से कोई को ज्ञान दोगे ना तो वाणी सिद्धि स्वरूप बन जाएगी, बोल सिद्ध होने लगेंगे, जो कुछ बोल दोगे हो जाएगा। कर्म से अगर गुणों का दान करोगे तो इतने गुणवान बन जाओगे, आपके अंदर सर्व गुण आपके जीवन में दिखाई देने लगे, फरिश्ता बन जाओगे। मनसा से अगर दान करोगे तो मनसा एकदम शक्तिशाली हो जाएगी, जैसा कहोगे वैसा करने लगेगी, करके देख लो। कहते हैं दान करो तो वरदान मिल जाएगा, ऐसे वरदान नहीं मिलता। जिस चीज को आप दान के रूप में लगा दो सेवा के अंदर, वो कई गुना होकर के आपको बढ़ के मिल जाएगी। इसलिए बाबा ने हम सब के अंदर अपने समान, जैसे ब्रह्मा बाबा के संस्कारों में दान रहा है, आपने सुना होगा बाबा के जीवन चरित्र के अंदर, बाबा को कई माताएं बहुत अच्छा अच्छा स्वेटर लेकर के आते थे, बाबा बहुत ठंडी है मैंने अपने हाथ से बनाया है, आप पहनेंगे ना? बच्ची क्यों नहीं, बाबा बहुत प्यार से उसको ले लेता। वो जो चला जाता था तो बाबा कोई बच्चे को देखा, इसको ठंडी, आओ बच्चे आओ इधर, उसको दे दिया। फिर वो माता देखती थी बाबा ने तो उसको दे दिया, तो आके बाबा को बोलती, बाबा मैंने तो आपके लिए बड़ी मेहनत, अरे बच्ची मैंने उसको दिया ना, वो निरंतर बाबा को याद करेगा, बाबा ने दिया बाबा ने दिया, तो तेरे को भी उसका पुण्य मिल जाएगा। अगर मैं पहनूंगा तो तेरे को कम पुण्य मिलेगा, वो पहनेगा तो डबल पुण्य मिलेगा, बाप भी दे रहा है वो भी देगी। तो बाबा तो ऐसे दान वृत्ति शुरू से संस्कारों में दान वृत्ति रही है, जो कुछ बाबा के पास आया बच्चों के लिए है, कोई चीज भी पर्सनल अपने लिए स्वीकार नहीं की, जो कुछ बाबा के घर में आया सब सेवा में लग जाए। तो इसलिए पर्सनल हम लोगों को क्या चाहिए, दो रोटी बाबा खिला रहा है, दो कपड़े पहना रहा है, बाकी क्या चाहिए? अपनी प्रॉपर्टी तो कोई बनानी नहीं, अपना बैंक बैलेंस तो कोई है ही नहीं, कोई के नाम से पर्सनल खाता है ही नहीं यज्ञ के अंदर, सब बाबा का है। तो अगर हम सब बाबा के यज्ञ में अपना दिल से समर्पित करते हैं, कभी भी सोच सोच के नहीं करना, नहीं तो बाबा उसको स्वीकार नहीं करेगा। दिल से समर्पित करके सेवा में लगा करके और उसका भागी बन जाएगा। तो सच्चे दिल से बहुत भावना पूर्वक जो कुछ है, बाबा ये यज्ञ है, बाबा ने यज्ञ रचा है, इसमें मेरा सफल हो, कुछ भी व्यर्थ न जाए। तो जो भी व्यर्थ जा रहा हो ना उसको चेक करना, नहीं तो व्यर्थ बहुत चीजें चली जाती, सोचते रहते समय व्यर्थ करने, संगम का इतना मूल्य समय इधर उधर की बातों में जा रहा है, संकल्प व्यर्थ जा रहे हैं, बोल व्यर्थ जा रहे हैं। तो जो कुछ व्यर्थ हो उसको बचाओ और बाबा के यज्ञ में सफल करो, तो वरदान मिलता जाएगा। तो दान से वरदान मिलता है, ठीक है? तो जो कुछ है दान की वृत्ति से एक का कई गुना कर लो संगम पर, ये दान से पुण्य बनता है, सेवा से दुआएं मिलती हैं, पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है, समझ गए? तो अगर हमारे अंदर बहुत अच्छे दान के संस्कार हैं, देना दान माना, बाबा कहता ब्राह्मणों में दान नहीं देना, दान शब्द दूसरों के लिए है, ब्राह्मणों में सहयोग देना ये भी दान है। कोई कमजोर है उसकी कमजोरी को देखकर कमजोरी का वर्णन और चिंतन नहीं करो, उसको शक्ति दो, सकास दो, शुभ भावनाएं दो, उसकी कमजोरी दूर हो जाए, ये दान है, ये सहयोग है। अगर उसकी कमजोरियों को हमने इधर उधर वर्णन कर दिया, विस्तार कर दिया, बेचारा और सुन लिया और कमजोर हो गया, तो उसका पाप है, बहुत बड़ा बोझ चढ़ जाता है। अगर वो आत्मा दिल से कष्ट हो गई, गिर गई और हमारे किसी बात से, तो हमारे ऊपर उसका हिस्सा आ जाए। इसलिए बाबा कहता है अपनी शुभ वृत्तियों से शुभ भावना का दान दो, तो दान देने से वो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी, कमजोर शक्तिशाली बन जाए। तो कोई भी अगर गरीब को भी दान दिया जाता है तो दुआएं देता है, लेकिन वो दान जो आज तक हम करते आए, बाबा कहता है अनजान में किया, इसलिए उसका भी पाप बन गया, कई लोग होते हैं दानी वृत्ति के, भक्ति के अंदर भावना होती है, लेकिन अगर कोई को पैसा देते देते उसकी आदतों को बिगाड़ दिया और वो आपके पैसे का दुरुपयोग कर ले, शराब पी ले, सिगरेट पी ले, सिनेमा देख ले, तो वो दान आपके खाते में क्या हो गया? पाप बन गया। कई बार अनजान में हम लोग ऐसा कर बैठते हैं। दान वृत्ति के संस्कार है ना, इसको हमने दे दिया। बाबा कहता देख, दान भी बहुत सोच समझ के पात्र को देना चाहिए, जहां आपका सफल हो, जिसका आपको पुण्य मिले। तो ऐसे दान वृत्ति के संस्कार, ऐसे वैसे देना नहीं, इधर उधर लुटाना नहीं, लेकिन स्थान पर समझ के सोच के बाबा के यज्ञ में जितना सफल करेंगे उसका रिटर्न बाबा देने के लिए बन जाए। तो बाबा ने यज्ञ रचा है राजस्व सुमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। ज्ञान मिल रहा है, अखंड पाठ चल रहा है ज्ञान का, और हम सभी मन से अपने संस्कारों का, बुराइयों का दान दे रहे हैं। पहले हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, फिर विश्व राज्य हमारे हाथों में आ जाए। ठीक है, ओम शांति।